पिछले अध्याय में आपने देखा कि मीशा दुल्हन बनती है और रुद्र शादी के लिए तैयार होता है। इस अध्याय में रणवीर रुद्र को शादी के लिए बुलाता है और धनराज पूनम को मीशा को लाने के लिए कहते हैं। रुद्र नीचे आता है, मीशा तैयार होती है और पूनम उसे ले जाती है। दिशा गिरते हुए देवांश द्वारा बचाई जाती है। कामना दिशा को डांटती है और देवांश कामना को शांत करता है। रुद्र मंडप में जाता है और पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पूनम मीशा को ले जाती है। अब आगे चैप्टर 55। अब आगे जिसे सुन धीरज जी बोले, हाँ पंडित जी, आ रहे हैं दोनों। वहीं रुद्र नीचे आ सीधे मंडप पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देख पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पूनम जी मीशा को लेकर आ जाती हैं। पंडित जी जैसे ही दुल्हन को बुलाने को बोलते हैं, वैसे ही पूनम मीशा को लेकर आ जाती है। मीशा को देखते ही सबकी नज़र मीशा पर चली जाती है। मीशा दुल्हन के हैवी मेकअप के साथ काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख सुमन जी मीशा के पास जा उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। इतना बोल वे अपनी आंखों से हल्का सा काजल निकाल मीशा के कान के पीछे लगा देती हैं, जिसे देख मीशा का मुंह बन जाता है। पर वे अभी कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वे चुप ही रहती हैं। वहीं सुमन के नज़र उतारने के बाद पूनम मीशा को मंडप में ले जाकर रुद्र के बगल में बैठा देती है, जिसे देख पंडित जी फिर से रस्में शुरू कर देते हैं, जिसे देख प्रीता मुस्कुराने लगती है। वहीं प्रीता को मुस्कुराते देख प्रीता के बगल में सोफे पर बैठे रणवीर जी प्रीता के कमर में हाथ डालते हुए बोले, प्रीत तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, कहीं तुम्हें हमारी शादी के दिन तो नहीं याद आ गए। वहीं प्रीता जो अपने पोते की शादी देख मुस्कुरा रही थी, रणवीर जी की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और हल्के गुस्से में रणवीर जी को देख बोली, आपने मेरी शादी वाले दिन कुछ याद करने के लिए छोड़ा था जो मैं अपनी शादी वाले दिन को याद करते मुस्कुराऊं? प्रीता की बात सुनकर रणवीर जी बोले, प्रीत मुझे उस दिन वैसा करने पर तुमने ही मजबूर किया था। रणवीर जी की बात सुनकर प्रीता बोली, हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि आप आइए और मुझसे जबरदस्ती शादी कीजिए। कितने अरमान थे मेरे कि मैं दुल्हन बनूंगी और कोई हैंडसम का लड़का मेरा शादी के मंडप में बैठा इंतजार करेगा, और जब मैं आऊंगी तो मेरा हाथ पकड़ खुद ही मंडप तक ले जाएगा। पर आपने मुझे दुल्हन बनने का मौका ही नहीं दिया, बस सिंपल के सलवार सूट में मुझे जबरदस्ती मंदिर में ले जाकर बस शादी कर ली। रणवीर जी प्रीता की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अपने पागलपन में उन्होंने प्रीता के साथ गलत किया था। लेकिन फिर भी प्रीता के सामने अपनी गलती ना मानते हुए कहते हैं, प्रीत मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के के साथ घूमती रही, इसलिए तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रणवीर जी की बात सुनकर अब प्रीता कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वे इस बूढ़े आदमी को अच्छे से जानती थी। अगर उसने उस लड़के की सफाई में कुछ भी कहा तो इस बूढ़े आदमी के ऊपर फिर से पागलपन सवार हो जाएगा और तकलीफ उसे ही सहनी पड़ेगी, इसलिए वे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप शादी देखने लगती है। वहीं प्रीता को कुछ ना बोलते देख रणवीर जी भी शादी को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला जा बाहर एक कार रुकती है, उसमें से दो लड़कियां जो देखने में बॉडीगार्ड्स लग रही थी वे उतरती हैं और अपने साथ रूही को भी उस कार से बाहर निकालती हैं। उसी के साथ दो और आदमी बॉडीगार्ड की ड्रेस पहने बाहर निकलते हैं और उन लड़कियों को अंदर जाने का इशारा करते हैं, जिसे देख वे लड़कियां रूही को ले अंदर चली जाती हैं। उन्हें कोई भी बॉडीगार्ड अंदर जाने से नहीं रोकता, क्योंकि उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया गया था। वहीं वे दोनों लड़कियां रूही को विला के अंदर ला उसे छोड़ देती हैं, साथ ही साथ उसके हाथों में बंधी रस्सी को भी खोल वहां से निकल जाती हैं। वहीं रूही जो कब से अपने हाथ खुलने का इंतजार कर रही थी, जब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ खुल गए हैं तो वे जल्दी से अपने मुंह में बंधा कपड़ा खोलती है, फिर एक गहरी सांस लेती है। उसके बाद अपने आंखों से भी काले रंग की बंधी पट्टी निकालती है। उसके बाद वे अपनी आंखें खोल अपने सामने देखती है और अपने सामने सिंघानिया विला को देख शौक रह जाती है। तभी उसकी नज़र खुद पर जाती है। वे देखती है कि उसने अब पिंक कलर का एक काफी खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है, हाथों में भर भर कर पिंक कलर की चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में एक बड़ा सा हार। वे खुद को देख तो नहीं पा रही थी, मगर वे महसूस कर सकती थी कि उसे किसी ने काफी अच्छे से सजाया है, जिसे महसूस कर वे परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, मैंने तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे, फिर मुझे ये सब कपड़े किसने पहनाए? मैं तो ऑटो में बैठ अनाथ आश्रम जा रही थी, मगर उस ऑटो वाले ने मुझ पर खुद स्प्रे किया, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को कार में पाया, और मेरे साथ शायद दो लड़कियां भी थी, क्योंकि मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। तो क्या मेरे कपड़े उन लड़कियों ने बदले? मगर क्यों? और वे मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गए? इसी तरह के बहुत सारे सवाल रूही के दिमाग में चल रहे थे, मगर उसके पास इन सभी सवालों का एक भी जवाब नहीं था। वे अपनी सोच में गुम ही थी, तभी एक नौकरानी रूही के पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, रूही मैम, आपको दिशा मैम कब से ढूंढ रही हैं, आप प्लीज मंडप की तरफ चली जाइए, मैम आपका वहीं पर इंतजार कर रही हैं। उस नौकरानी की बात सुनकर रूही को अब दिशा की याद आती है कि दिशा अभी तक सिंघानिया विला में है, जिसे याद कर रूही खुद से कहती है, मुझे पता नहीं क्यों, पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। किसी का मुझे किडनैप करना, फिर तैयार कर वापस सिंघानिया विला छोड़कर वापस जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर यहाँ कुछ गलत होने वाला है, और मेरा यहाँ पर रहना भी कुछ ठीक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, पहले दिशा दी के पास चली जाती हूँ, फिर उन्हें यहाँ से ले तुरंत चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है।
ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब का डर दिख रहा था, और ये डर क्यों था उसे खुद भी पता नहीं था। इसलिए वे अपने सारे सवालों को अपने दिमाग से झटक सबसे पहले दिशा के मिलने के लिए मंडप की तरफ चली जाती है।
कुछ देर में वे दिशा को ढूंढते हुए मंडप पर पहुंचती हैं, तो देखती है कि रुद्र की शादी मिशा के साथ हो रही है, जिसे देख वे चैन की सांस लेती है, क्योंकि जिस तरह का बिहेव रुद्र उसके साथ करता था, उसे देख उसके मन में एक अजीब का डर लगा रहता था कि रुद्र उसके साथ कब क्या कर दे। लेकिन रुद्र की शादी होता हुआ देख उसके मन से वे डर अब हल्का कम होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर रुद्र की शादी हो जाएगी तो वे दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा।